प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने कोविड-19 अलगाव भुगतान को फिर से बहाल करने के दबाव पर जारी रखा अपना विरोध। आपूर्ति और कार्यबल की कमी की वजह से व्यवसायों के लिए भविष्य में कठिन महीने। और खेल में कार्लटन AFL से कोविड-19 वैक्सीन जनादेश समाप्त करने के बाद मुआवजे की कर सकता है मांग। अब समाचार विस्तार से। कोविड होने पर कुछ श्रमिकों के 7 दिनों तक के आइसोलेशन की छुट्टी में $750 के भुगतान को फिर से शुरू करने पर फेडरल सरकार पर दबाव जारी है। 18 जुलाई यानी अगले सोमवार होने वाली राष्ट्रीय कैबिनेट बैठक से पहले न्यू साउथ वेल्स और तस्मानिया के मंत्रियों ने भुगतान की मांग की है, जिसका उद्देश्य उन श्रमिकों को फिर से नियुक्त करना है जिनके पास कोई सिक लीव्स नहीं है। बढ़ते कोविड मामलों को देख फेडरल सरकार के 2 बैकबेंचर्स माइक फ्रीलैंडर और मिशेल आनंदा राजा ने भुगतान की पुनर्स्थापना का समर्थन करने के लिए इस सप्ताह आवाज उठाई है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी का कहना है कि कई कार्यस्थल पहले से ही उन लोगों के लिए सवैतनिक अवकाश की पेशकश कर रहे हैं जो कोविड-19 से संक्रमित हैं। वे कहते हैं वे केवल पूर्व फेडरल सरकार की नीति का पालन कर रहे हैं जिन्होंने भुगतान के लिए 30 जून की कट ऑफ तिथि निर्धारित की थी।
What's happening over a period of time is that the economy and the way that we work is adjusting to the circumstances which are there. These payments were put in place by the former government with an end date. That was a decision that they made at that time.
फेडरल सरकार आपूर्ति और कार्यबल की कमी के दोहरे दबाव को देखते हुए व्यवसायों के लिए कठिन महीनों की भविष्यवाणी कर रही है। ऑस्ट्रेलिया की बेरोजगारी दर रिकॉर्ड में लगभग सबसे निचले स्तर पर आ गई है, जो पिछले महीने 3.5% थी। नतीजतन श्रम बाजार तंग है और उपलब्ध श्रमिकों की कमी आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों से जूझ रहे हैं। कुछ व्यवसायों को अपने संचालन को प्रतिबंधित करने के लिए मजबूर कर रहा है। ABC से बात करते हुए फेडरल सहायक कोषाध्यक्ष स्टीफन जोन्स ने बताया कि आगे के महीने कठिन हो सकते हैं।
It's the job of the government to try and manage our way through all of these. It's going to be a difficult few months. We know there's going to be sunshine on the other side of it, but over the next 3-6 months, we've got a really rough ride ahead of us.
न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर डोमिनिक पेरोटे अन्य राज्य और क्षेत्र के नेताओं के साथ फेडरल सरकार के कोविड आधार भुगतानों को बहाल करने पर विचार करने के लिए शामिल हो गए हैं। उनका तर्क है कि अनिवार्य अलगाव अवधि का मतलब है कि कुछ कर्मचारी जिनके पास सिक लीव्स हैं या वे घर से काम नहीं कर सकते हैं, वे आय के बिना फंस जाएंगे। इस मुद्दे और चल रही महामारी प्रतिसाद पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री ने सोमवार यानी 18 तारीख को राष्ट्रीय मंत्रिमंडल की अंतिम मिनट की बैठक बुलाई है। डोमिनिक पेरोटे कहते हैं कि वे महामारी समर्थन पर सभी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, जिसमें फेडरल और राज्य सरकारें शामिल हैं।
I think it is unfair that when the state imposes public health orders on people that restrict their liberty and their capacity to work for the government to not provide financial support.
इस बीच न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर ने ये भी पुष्टि की कि न्यू साउथ वेल्स में कमजोर समुदाय अब 3 महीनों में 10 मुफ्त रैपिड एंटीजन टेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। राज्य ने कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बाद अपने रियायत कार्यक्रम का विस्तार किया है। डोमिनिक पेरोटे कहते हैं कि राज्य सरकार अपने मौजूदा कार्यक्रम का विस्तार करके कमजोर समुदायों को मुफ्त रैपिड एंटीजन टेस्ट प्रदान करेगी, जिसमें फेडरल सरकार के कॉन्सेशनल एक्सेस प्रोग्राम के माध्यम से उन परीक्षणों को शामिल किया जाएगा जो महीने के अंत में समाप्त होने वाले हैं। विस्तारित कार्यक्रम न्यू साउथ वेल्स में पात्र कॉन्सेशन कार्ड धारकों को 31 अक्टूबर 2022 तक 3 महीनों में 10 मुफ्त रैपिड एंटीजन टेस्ट करने की अनुमति देगा। एंथनी अल्बनीजी क्लाइमेट इमरजेंसी के साथ वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री तक की वृद्धि सीमित होने की घोषणा में पैसिफिक द्वीप के नेताओं में शामिल हो गए हैं। पैसिफिक आइलैंड फोरम में 2 दिनों की बैठकों के बाद संयुक्त शासकीय सूचना जारी हुई। अब अल्बनीजी सरकार पर ऑस्ट्रेलिया में उत्सर्जन में गहरी कटौती करने का दबाव पड़ेगा। सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए वानुआतु के अभियान का भी समर्थन किया, ताकि ये विचार किया जा सके कि जलवायु कार्यवाही की कमी मानव अधिकारों का उल्लंघन है या नहीं। गुरुवार को फिजी के प्रधानमंत्री फ्रैंक बाइनीमारामा ने ट्विटर पर ऑस्ट्रेलिया से और अधिक प्रयास करने का आह्वान किया, लेकिन प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने कहा कि सरकार के नए जलवायु लक्ष्यों का पैसिफिक नेताओं द्वारा स्वागत ही किया गया है।
About Australia's role at the meeting. They were positive and it was reflected as well in the communique. They welcomed Australia's new position on climate change.
और फेडरल सरकार ने दूसरी तरफ ये भी पुष्टि की है कि वे पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया लेबर मोबिलिटी स्कीम यानी पाम का विस्तार सेवा क्षेत्र में करेगी, जिसमें वृद्ध और विकलांगता देखभाल भी शामिल है, ताकि इस कमी को पूरा किया जा सके। ये योजना ऑस्ट्रेलिया के लिए एक प्रमुख राजनयिक फोकस रही है, लेकिन परंपरागत रूप से श्रमिकों को कृषि और आतिथ्य क्षेत्रों में लाने के लिए केंद्रित है। प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने इसे ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक के लिए एक प्रकार की जीत कहा है, जो श्रमिकों को 4 साल तक ऑस्ट्रेलिया में रहने की अनुमति देता है। ऑस्ट्रेलिया विशेष रूप से वृद्ध देखभाल श्रमिकों और नर्सों को लाने के लिए उनके कमी को भरने पर ध्यान देगा। न्यूनतम देखभाल के लिए नियम अगले साल लागू होंगे। एक और रूसी मिसाइल हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और 40 से अधिक अन्य देश यूक्रेन में संदिग्ध युद्ध अपराधों की जांच के समन्वय के लिए सहमत हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हेग में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी के मुख्यालय में आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि रूसी मिसाइलों ने देश के पश्चिम में 2 सामुदायिक केंद्रों पर हमला किया था, जिसमें कम से कम 23 लोग मारे गए थे।
This day has once again proven that Russia must be officially recognized as a terrorist state. No other state in the world poses such a terrorist threat as Russia. No other state in the world allows itself to daily destroy peaceful cities and ordinary human life with cruise missiles and rocket artillery. As a result of just one missile strike at our city of Vinnytsia, 23 people were killed, 3 children under the age of 10. And unfortunately, it is not yet the final number.
फरवरी में यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से रूस ने युद्ध अपराधों में शामिल होने और जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाने से इनकार किया है। पता चला है कि रूसी बोलने वालों की रक्षा के लिए एक विशेष सैन्य अभियान शुरू किया और खतरनाक राष्ट्रवादियों को जड़ से हटा दिया। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि रूस बेसबब विजय की लड़ाई लड़ रहा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी इवाना ट्रंप का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया और उन्हें समाज द्वारा श्रद्धांजलि देनी जारी है। अधिकारियों को श्री ट्रंप की पूर्व पत्नी का शव न्यूयॉर्क शहर में उनके घर में एक सीढ़ी के नीचे मिला। ऐसा माना जाता है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था, लेकिन मृत्यु के आधिकारिक कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। एरिक डोनाल्ड जूनियर और इवांका ट्रंप इन बच्चों ने फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक पारिवारिक बयान में लिखा, हमारी माँ एक असाधारण महिला थी, व्यापार में एक ताकत, एक विश्व स्तरीय एथलीट, एक उज्ज्वल सौंदर्य और देखभाल करने वाली माँ और दोस्त थी। इवाना ट्रंप का जन्म 1949 में चेक गणराज्य में हुआ था। वे एक पूर्व मॉडल और स्की प्रशिक्षक थी। उनकी शादी डोनाल्ड ट्रंप से 1977 में हुई। उसके बाद 1992 तक वे दोनों साथ थे। इस दौरान उन्होंने ट्रंप संगठन के भीतर कई भूमिकाएं निभाई, जिसमें इंटीरियर डिजाइन की उपाध्यक्ष के रूप में भी शामिल थी। अब समाचार भारत से। भारत में पिछले 24 घंटे में 20,038 नए कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। इस अवधि में कोविड-19 से 47 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मौजूदा रिकवरी रेट 98.48% है। अब जानेंगे डॉलर का हाल। मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के आ जाने तक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 68 सेंट्स है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 53.91 रुपये हो गई है। अब खबरें खेल जगत से। ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग में कार्लटन क्लब के कोच माइकल वॉस कहते हैं कि क्लब अपने कोविड 19 वैक्सीन जनादेश को हटाने पर AFL से मुआवजे की मांग कर सकता है। कार्लटन के डिफेंडर लियाम जोन्स ने वैक्सीन लेने के बजाय पिछले नवंबर में सेवानिवृत्त होने का फैसला किया। ये 31 वर्षीय क्वींसलैंड में निचले स्तर पर खेलते आए हैं, लेकिन अब AFL वापसी का प्रयास करने के लिए इत्तला दे दी गई है कि जनादेश खत्म हो गया है और प्रतिद्वंदी क्लब एसेंडन के साथ अनौपचारिक रूप से मुलाकात भी की है। वॉस कहते हैं कि अगर जोन्स किसी अन्य AFL क्लब के साथ हस्ताक्षर करते हैं तो कार्लटन किसी प्रकार के मुआवजे की मांग कर सकता है।
Yeah, we're exploring it. So we'll certainly ask that question. We'll work with them pretty closely over the next little while to see what that looks like for us. Obviously, Jonesy chose to retire, so that's added some complexity into it. But we need to what that looks like. I mean, it's clearly a really complex situation. So we'll explore it and see what our options are, that's for sure.
और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में कल एक या दो बौछार हो सकती है और वहां का न्यूनतम तापमान 9 और अधिकतम तापमान 19 डिग्री तक रहेगा। एडिलेड में बारिश की संभावना रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम तापमान 15 डिग्री तक रहेगा। मेलबर्न में तेज हवा के साथ एक या दो बौछार हो सकती है और वहां का न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम तापमान 13 डिग्री तक रहेगा। कैनबेरा में बादल छाए रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान -3 और अधिकतम तापमान 10 डिग्री तक रहेगा। सिडनी में आंशिक बादल रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान 5 और अधिकतम तापमान 16 डिग्री तक रहेगा। ब्रिस्बेन में ज्यादातर धूप खिली रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम तापमान 21 डिग्री तक रहेगा। डार्विन में भी ज्यादातर धूप खिली रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान रहेगा 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री। और वहां भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल बारिश हो सकती है और वहां का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रहेगा। मौसम की जानकारी के साथ आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद।